एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारी दुनिया को हर पल हर सेकंड कंट्रोल करता है, लेकिन हम उस पर शायद ही कभी सवाल उठाते हैं।
बिल्कुल, सोचिए, सुबह अलार्म बजने से लेकर रात को स्लीप ट्रैकर देखने तक हमारी पूरी जिंदगी नंबरों के इर्द गिर्द घूमती है। वजन, कैलोरी, क्रेडिट स्कोर, GDP, इन्फ्लेशन, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारी जिंदगी के फैसलों को आकार देते हैं।
और आज हम इन्हीं नंबरों के पीछे की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी चर्चा डेविड जे हैंड की किताब मेजरमेंट यानी मापन पर आधारित है।
हाँ,
ये किताब हमें सिखाती है कि इन नंबरों पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय एक स्मार्ट जासूस की तरह इनके पीछे के सच को कैसे जाने।
तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये नंबर आखिर बनते कैसे हैं और हमारी दुनिया पर राज कैसे करते हैं।
जरूर।
तो चर्चा शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये डेविड जे हैंड हैं कौन, मतलब वो कौन होते हैं हमें मेजरमेंट के बारे में बताने वाले।
और ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, वो सिर्फ एक लेखक नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे माने हुए स्टैट्स एक्सपर्ट्स में से एक हैं।
अच्छा,
वो इंपीरियल कॉलेज लंदन में गणित के एमेरिटस प्रोफेसर हैं और रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं।
मतलब उनका पूरा जीवन ही नंबरों और डेटा के साथ
गुजरा है, बिल्कुल। और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो स्टैट्स जैसे मुश्किल सब्जेक्ट के आइडियाज को भी बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाती हैं।
ये बहुत जरूरी है।
उन्होंने सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाया नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड्स में सलाहकार के तौर पर काम किया है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे गलत माप तौल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी बड़ी बड़ी आपदाओं को जन्म दे सकती है।
अच्छा, तो उनका नज़रिया सिर्फ किताबी नहीं बल्कि असल दुनिया के तजुर्बे पर आधारित है। वो जानते हैं कि नंबर जब गलत हाथों में पड़ते हैं तो कितना नुकसान हो सकता है।
सही पकड़ा। इसीलिए वो मेजरमेंट को सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं बल्कि एक इंसानी कोशिश मानती हैं जिसके गहरे सामाजिक नतीजे होते हैं, और यही बात इस किताब को इतना खास बनाती है।
तो ये किताब आखिर है किस बारे में, इसका कोर आइडिया क्या है?
किताब का कोर आइडिया बहुत पावरफुल और कह सकती हूँ थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि मापन यानी मेजरमेंट कोई प्राकृतिक खोज नहीं है, ये एक मानवीय आविष्कार है।
एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो हमेशा लगता था कि 1 मीटर की लंबाई, नहीं मतलब 1 किलो का वजन, तो बस प्रकृति का नियम है जिसे हमने बस खोजा है।
और यही सबसे बड़ा भ्रम है जिसे ये किताब तोड़ती है। हैंड कहती हैं कि ये सब चीजें हमने बनाई हैं, ये समझौते हैं, नियम हैं जो हमने तय किए हैं।
मतलब
प्रकृति में किलोग्राम या GDP जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। हमने दुनिया को समझने के लिए ये पैमाने बनाए हैं।
वाह, मतलब हम सिर्फ दुनिया को नाप नहीं रहे बल्कि उसे समझने के लिए एक भाषा बना रहे हैं।
बिल्कुल। और हर माप असलियत का एक मॉडल है, एक नक्शा है, लेकिन नक्शा इलाका नहीं होता।
सही है।
किताब का मकसद हमें नंबरों का एक पैसिव कंज्यूमर बनाने से रोककर एक एक्टिव क्रिटिकल थिंकर बनाना है। ये हमें सिखाती है कि जब भी कोई आंकड़ा सामने आए तो पूछो, इसे किसने मापा, कैसे मापा और क्यों मापा।
तो लेखक का बैकग्राउंड समझने के बाद ये तो साफ है कि वो इस टॉपिक के एक्सपर्ट हैं। किताब में जो सबसे पहली और बुनियादी बात वो समझाते हैं वो थोड़ी एकेडमिक लगती है, पर हैं बहुत कमाल की। रिप्रेजेंटेशनल थियोरी ऑफ मेजरमेंट या मापन का प्रतिनिधित्वात्मक सिद्धांत।
हाँ, ये नाम सुनने में भारी लगता है पर इसका मतलब बहुत सीधा है।
क्या मतलब है इसका?
इसका मतलब है कि मेजरमेंट का काम किसी चीज में, कह लीजिए, पहले से मौजूद नंबर को खोजना नहीं है बल्कि कुछ नियमों के हिसाब से किसी गुण को एक नंबर देना है।
इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकती हैं?
जरूर। मान लीजिए आपके पास दो छड़ियां हैं, अ और ब। अगर छड़ी अ छड़ी ब से लंबी है तो रिप्रेजेंटेशनल थियरी कहती है कि अ को जो नंबर दिया जाएगा वो ब को दिए गए नंबर से बड़ा होना चाहिए।
बस
बस नियम इतना ही है। हम असलियत के एक गुण यानी लंबाई को नंबरों की दुनिया के एक गुण यानी बड़ा होना से जोड़ रहे हैं।
अच्छा, तो हम असलियत का एक संख्यात्मक नक्शा बना रहे हैं और किताब कहती है कि नक्शे अलग अलग तरह के हो सकते हैं जिन्हें स्केल्स या पैमाने कहा जाता है।
हाँ,
ये क्या है? क्या ये रूलर पर बने निशानों जैसे हैं?
कुछ कुछ वैसा ही, पर अलग अलग तरह के रूलर समझ लीजिए। सबसे बेसिक है नॉमिनल स्केल।
नॉमिनल?
ये बस नाम देने जैसा है। जैसे क्रिकेट में जर्सी नंबर 10 मतलब सचिन और 7 मतलब धोनी। आप 10 और 7 को जोड़कर कुछ नहीं निकाल सकते, ये बस एक पहचान है।
ठीक है, ये तो आसान था। और अगर किसी रेस में कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है तो?
वो हो गया ऑर्डिनल स्केल। आपको क्रम मतलब ऑर्डर पता है, पर ये नहीं पता कि फर्स्ट आने वाला सेकंड आने वाले से कितना सेकंड तेज था।
हाँ, हो सकता है 1 मिलीसेकंड हो या 10 सेकंड।
एग्जैक्टली। यहाँ बस रैंक का पता चलता है, बीच के अंतर का नहीं।
समझ गया। इसके बाद आता है इंटरवल स्केल। ये तापमान जैसा है ना?
बिल्कुल सही। सेल्सियस में 10 डिग्री और 20 डिग्री के बीच का अंतर उतना ही है जितना 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच, यानी 10 डिग्री का फर्क। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 40 डिग्री तापमान 20 डिग्री से दोगुना गर्म है।
क्यों?
क्योंकि इसका कोई असली शून्य नहीं होता। शून्य डिग्री का मतलब गर्मी का न होना नहीं है।
अच्छा।
और आखिर में है रेशो स्केल, जो सबसे पावरफुल है।
जी हाँ।
इसमें एक असली शून्य होता है, जैसे ऊंचाई या वजन। 2 मीटर लंबा व्यक्ति 1 मीटर लंबे व्यक्ति से ठीक दोगुना लंबा होता है। और 0 मीटर का मतलब है कोई ऊंचाई नहीं। यहाँ आप गुणा भाग सब कर सकते हैं।
तो ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप जर्सी नंबरों का औसत निकालने लगेंगे
तो नतीजा पूरी तरह बकवास होगा।
बिल्कुल।
ये तो हुई चीजों को मापने की बात, पर इंसानों को मापना, जैसे किसी की बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस या खुशी, वो तो बहुत मुश्किल होगा।
बेहद मुश्किल। और यहीं पर किताब IQ टेस्टिंग का जिक्र करती है। बुद्धिमत्ता को आप किसी फीते से नहीं नाप सकते।
जी,
इसलिए हम टेस्ट बनाते हैं।
यहाँ दो बातें बहुत जरूरी हो जाती हैं, विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी और वैधता यानी वैलिडिटी।
इसका क्या मतलब हुआ?
रिलायबिलिटी का मतलब है क्या टेस्ट बार बार एक जैसे नतीजे देता है। अगर आप आज और कल टेस्ट दें तो क्या स्कोर लगभग वही आएगा।
ओके।
और वैलिडिटी का मतलब है क्या ये टेस्ट वाकई बुद्धिमत्ता को माप रहा है, या फिर सिर्फ ये माप रहा है कि आप उस खास तरह के टेस्ट को देने में कितने अच्छे हैं।
ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और जब हम पूरे समाज को मापते हैं, जैसे GDP या महंगाई दर से, तब तो मुश्किलें और भी
बढ़ जाती हैं। हाँ, और यहाँ गुड हार्ट का नियम बहुत दिलचस्प हो जाता है।
हाँ, मुझे ये नियम याद आ रहा है, गुड हार्ट्स लॉ। ये सुनने में बड़ा मजेदार लगता है।
हाँ, और ये शायद आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए सबसे जरूरी सबक है। चार्ल्स गुडहार्ट का ये नियम कहता है, जब कोई माप एक लक्ष्य बन जाता है तो वो एक अच्छा माप नहीं रह जाता।
यानी सिस्टम को गेम करना।
बिल्कुल। इसका सार ये है कि जैसे ही आप किसी नंबर को टारगेट बना देते हैं, लोग उस नंबर को सुधारने में लग जाते हैं असली काम को छोड़कर।
अच्छा।
किताब में यूनिवर्सिटी रैंकिंग का उदाहरण है। जब यूनिवर्सिटी सिर्फ रैंकिंग सुधारने पर फोकस करती हैं, तो वो रिसर्च की क्वालिटी सुधारने के बजाय उन चीजों पर पैसा खर्च करने लगती हैं जिनसे रैंकिंग के मीट्रिक्स सुधरें।
मैं एक और उदाहरण सोच सकता हूँ, जैसे किसी कॉल सेंटर के कर्मचारी को सिर्फ एवरेज कॉल टाइम पर टारगेट दिया जाए कि हर कॉल जल्दी खत्म करनी है। तो वो शायद मुश्किल समस्या वाले ग्राहकों का फोन ही काट देगा ताकि उसका एवरेज कम रहे। असली मकसद यानी ग्राहक की मदद तो पीछे ही छूट गया।
एकदम सही। और आखिर में किताब इस भ्रम को तोड़ती है कि माप बिल्कुल सटीक होता है। हर माप में थोड़ी बहुत त्रुटि और अनिश्चितता हमेशा होती है।
एरर और अनसर्टेनिटी।
हाँ, एक अच्छा माप कभी भी एक अकेला नंबर नहीं होता, बल्कि संभावित मानों की एक रेंज होती है। जैसे चुनावों के नतीजों में ±3% मार्जिन ऑफ एरर बताया जाता है।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ बड़े संदेश और टेकअवेज क्या निकलते हैं? मेरे लिए जो सबसे बड़ा आइडिया है वो हमने शुरू में ही डिस्कस किया, मापन एक मानवीय रचना है, कोई प्राकृतिक खोज नहीं। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा कि IQ टेस्ट या GDP जैसी चीजें बनाई गई हैं, खोजी नहीं गई, तो सच कहूं मेरा दिमाग ही हिल गया था।
हाँ, ये वाकई सोचने का नजरिया बदल देता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरा बड़ा संदेश है, नक्शा इलाका नहीं होता।
नक्शा इलाका नहीं होता।
माप असलियत का एक सरलीकृत मॉडल है, पूरी असलियत नहीं। आपका क्रेडिट स्कोर आपकी कीमत नहीं बताता, और किसी देश की GDP वहां के लोगों की असली भलाई नहीं बताती। माप को ही हकीकत मान लेना सबसे बड़ी गलती है।
तीसरा संदेश सीधे सीधे गुडहार्ट के नियम से जुड़ा है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी सिस्टम में परफॉर्मेंस के लिए KPI या मीट्रिक्स बनाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए।
बिल्कुल।
क्योंकि लोग हमेशा उन मीट्रिक्स को पूरा करने के तरीके खोज लेंगे, भले ही उससे असली लक्ष्य को नुकसान क्यों ना हो। जैसे भारत में कई बार सरकारी योजनाओं के लक्ष्यों को सिर्फ कागज पर पूरा दिखा दिया जाता है।
और चौथा संदेश जो मुझे बहुत जरूरी लगा वो सामाजिक न्याय से जुड़ा है। माप की प्रणालियां समाज में मौजूद असमानताओं को बढ़ा भी सकती हैं।
जैसे
मान लीजिए आपने कोई नौकरी का टेस्ट बनाया जो किसी एक खास कल्चर या बैकग्राउंड के लोगों के लिए आसान है, तो ये सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं है, ये एक सामाजिक अन्याय का मुद्दा बन जाता है। आपका माप पक्षपाती हो सकता है।
ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। किताब में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक मुख्य विचार जो मेरे दिमाग में अटक गया है वो ये है।
बताइए।
माप उन नियमों के अनुसार चीजों को नंबर देने की प्रक्रिया है, लेकिन नियमों का चुनाव ही वो जगह है जहां मानवीय मूल्य संख्याओं के तथाकथित वस्तुनिष्ठ दायरे में प्रवेश करते हैं।
ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि नंबर भले ही निष्पक्ष दिखें, पर उन्हें बनाने के नियम कि क्या मापना है और कैसे मापना है, वो हमारी प्राथमिकताओं और हमारे पूर्वाग्रहों से तय होते हैं।
जैसे
जब हम GDP मापते हैं तो हम अवैतनिक घरेलू काम को शामिल नहीं करते। ये एक नियम है और ये नियम एक मूल्य निर्णय, एक वैल्यू जजमेंट है।
समझ गया। एक और विचार है, खतरा ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा मापते हैं, बल्कि ये है कि हम बिना सोचे समझे मापते हैं।
संख्याओं को बिना उनके निर्माण, उनकी सीमाओं या उनके प्रभावों को समझे स्वीकार कर लेते हैं।
हाँ, ये मुझे भी बहुत पसंद आया।
ये सीधे सीधे मेजरमेंट लिटरेसी की बात है। बिल्कुल, मापन साक्षरता। समस्या नंबर नहीं है, समस्या उन नंबरों की हमारी नासमझी है। हम बस हेडलाइन में GDP का नंबर देखते हैं और खुश या दुखी हो जाते हैं, बिना ये समझे कि वो नंबर बना कैसे।
और अंत में भविष्य को लेकर एक चेतावनी जैसा विचार। हमारे एल्गोरिथम युग में सवाल ये नहीं है कि क्या मशीनें इंसानों से बेहतर माप सकती हैं,
बल्कि ये है कि क्या हम ऐसी माप प्रणालियां बना सकते हैं जो मानवीय विवेक को बदलने के बजाय उसे बढ़ाएं।
वाह,
क्या बात है। मतलब डेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके सही मतलब और संदर्भ को समझने के लिए इंसानी समझदारी हमेशा जरूरी रहेगी। हमें ऐसे सिस्टम बनाने हैं जो हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करे, ना कि हमारे लिए फैसले लेने लगे।
तो इन सभी विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? हम इन्हें असल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
बहुत तरीकों से। सबसे पहले तो व्यक्तिगत स्तर पर अपने फिटनेस ट्रैकर या वजन नापने की मशीन को ही ले लीजिए।
हाँ, मेरे साथ तो ये होता है, अगर मेरी स्मार्ट वॉच कहती है कि आज मैं 8 घंटे नहीं सोया तो मैं दिन भर थका हुआ महसूस करता हूँ, भले ही मैं फ्रेश उठा हूँ, वो नंबर मेरे दिमाग पर हावी हो जाता है।
बिल्कुल, किताब यही सिखाती है कि समझें, ये सिर्फ अनुमान है, आपकी पूरी हकीकत नहीं। एक दिन के डेटा पर ज्यादा रिएक्ट करने के बजाय लंबे समय के ट्रेंड्स पर ध्यान दें।
सही है।
आपका वजन एक दिन में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक महीने का ट्रेंड ज्यादा मायने रखता है।
और ऑफिस में, खासकर मैनेजमेंट में, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPIs बनाते समय गुडहार्ट के नियम को हमेशा याद रखना चाहिए।
बिल्कुल, सिर्फ एक मीट्रिक पर फोकस करने के बजाय कई मीट्रिक्स का एक संतुलित सेट बनाना बेहतर है।
और एक नागरिक के तौर पर भी ये बहुत जरूरी है। जब आप अखबार में GDP, महंगाई या बेरोजगारी के आंकड़े देखें तो थोड़ा रुक कर सोचें।
पूछें, इस बेरोजगारी के आंकड़े में किसे गिना जा रहा है और किसे नहीं? क्या इसमें उन लोगों को गिना गया है जिन्होंने उम्मीद खो दी है और नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया है?
और शायद सबसे महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों में। जब डॉक्टर कोई लैब रिपोर्ट दें तो उस एक नंबर को पत्थर की लकीर ना माने।
बिल्कुल नहीं।
आप पूछ सकते हैं कि इस टेस्ट की सामान्य भिन्नता, मतलब नॉर्मल वेरिएशन, कितनी है। ये समझना कि एक अकेला टेस्ट रिजल्ट सिर्फ एक स्नैपशॉट है, आपको बेहतर निर्णय लेने और बेवजह की चिंता से बचने में मदद कर सकता है।
सही कहा।
इस पूरी चर्चा के अंत में मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि 21वीं सदी में साक्षर होने का मतलब सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है, बल्कि नंबरों को पढ़ना और समझना भी है। ये जानना कि वो नंबर कैसे बने, वे किसका प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी सीमाएं क्या हैं।
और मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि कैसे मापन, जो इतना वैज्ञानिक और निष्पक्ष विषय लगता है, वो असल में न्याय, समानता और राजनीति का मुद्दा बन सकता है। असल में हमारे समाज के मूल्यों और शक्ति के समीकरणों को दिखाती है।
बिल्कुल सही कहा। और अंत में हम शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया ज्यादा से ज्यादा एल्गोरिथम और AI द्वारा मापी और चलाई जा रही है, हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये माँ प्रणालियां हमारी सेवा करें, ना कि हमें नियंत्रित करने लगें। इन स्वचालित सिस्टम में मानवीय विवेक और संदर्भ की जगह कहां और कैसे सुरक्षित रखी जाएगी?
एक बहुत ही जरूरी और विचारणीय प्रश्न।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।